الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ نے ہماری، آپ کی اور پوری دنیا کی کامیابی دین میں رکھی ہے. یہ جملہ ہم بار بار سنتے ہیں، اور جو چیز کثرت سے سنی جاتی ہے اس کی حقیقت اوجل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس پہ غور نہیں کرتے کہ کیا کہا جا رہا ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہماری، آپ کی، پوری انسانیت کی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی دین میں رکھی ہے. اگر کوئی شخص اس نظریے کے خلاف کوئی دوسرا تصور رکھتا ہے تو اس کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا. کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، دین. جو دین کو قبول کرے گا اور دین پر چلے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اور جو دین کو قبول نہیں کرے گا، یا دین کو قبول کرے گا مگر اس پر چلے گا نہیں، وہ دنیا میں بھی خطرے میں، آخرت میں بھی خطرے میں. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ میں تو دین پر نہیں چلتا، اس کے باوجود میرے گھر جیسا پورے گاؤں میں کسی کے پاس گھر نہیں، اور میرے پاس جیسی گاڑی ہے ویسی گاڑی کسی کے پاس نہیں، جتنی کھیتی میرے پاس ہے اتنی کسی کے پاس نہیں، اور گاؤں میں جتنی عزت میری ہے اتنی کسی کی نہیں. اور یہ مسکین اور یہ بیچارہ اور یہ غریب ये तीनों दिन पे चल रहे हैं लेकिन झोपड़े में रहते हैं, खुश्क रोटी खाते हैं, दाल पे गुजारा करते हैं। इनके पास कार तो क्या होती, टू व्हीलर भी नहीं है, बाइसिकल भी नहीं है, और ये दूसरों के खेतों में काम करते हैं। तो हमारी आपकी पूरी इंसानियत की, दुनिया की और आखिरत की कामयाबी दीन में रखी। मैं तो इस नजरिए के बरअक्स चीज देख रहा हूं। मैं दिन पे नहीं चलता फिर भी मेरे पास सब कुछ है, और ये दिन पे चल रहा है फिर भी इसके पास कुछ नहीं। ये गलत फहमी इसलिए हो रही है कि असबाब वसाइल और असबाब और वसाइल के नतीजे में जो राहत और सुकून मिलता है उन दोनों में फर्क नहीं कर पा रहा है। एक है वसीला राहत का और दूसरी चीज है राहत। एक है वसीला सुकून का और दूसरी चीज है सुकून। ये दो अलग अलग चीजें हैं। और कामयाबी किसी को वसीले से हासिल नहीं होती, जो असल नतीजा है उसके हुसूल पर कामयाबी मिलती है। तो एक शख्स के पास राहत के और सुकून के तमाम वसाइल हैं, खेती बाड़ी है, जायदाद है, बेहतरीन घर है, एयर कंडीशन है, फ्रिज फ्रीजर है, उम्दा गद्दे वाले बिस्तर है, बेहतरीन सोफे हैं, कालीन घर में लगी हुई है, बेहतरीन गाड़ी है, लेकिन राहत नहीं है, सुकून नहीं है। हाय 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 हाय, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, हर वक्त फिक्र में लगा रहता है, हर वक्त फिक्र में लगा रहता है। है वो जमीन अगर बिक जावे तो मैं ले लूं, वो जमीन अगर बिक जावे तो मैं ले लूं, ये जमीन कब बिकेगा मैं ले लूं, ये जमीन कब बिकेगा मैं ले लूं, ये जमीन क्यों नहीं बिक रही है। देखो ये बेसुकूनी, वो समझ नहीं पा रहा है लेकिन ये बेसुकूनी है, राहत नहीं है उसे, राहत नहीं। राहत सुकून कब मिलता है, जब इंसान का दिल ये कहे कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, मेरा पेट एक रोटी से भर जाता है, मैंने एक रोटी खा ली, अब मेरा दिल दिमाग ये कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो चीज चाहिए थी वो मुझे मिल गई, तो मुझे एक रोटी के नतीजे में सुकून मिल गया, राहत मिल गई, तो मैं कामयाब। और ये 10 रोटी खाते हैं और मिली इनको 9, मुझे एक ही मिली, इनको 9 मिली, लेकिन 9 खाने के बाद भी इनका दिल अंदर से ये कह रहा है कि कमी रही, एक और रोटी की जरूरत है। तो हमें एक रोटी के नतीजे में सुकून और राहत हासिल हुई और इन्हें 9 रोटी मिलने के बाद भी सुकून और राहत मयसर नहीं हुई। कामयाबी का मतलब यह है कि ये जो वसाइल अल्लाह ताला शानहू ने पैदा किए हैं जिन मकासिद के लिए, उन मकासिद में कामयाबी हासिल हो जाए। मेरे घर में एयर कंडीशन लगा हुआ है और मैं कहूं कि मैं नंबर 1 पर रखो, 1 पर रखो, इसे 25 डिग्री पे रखो, मैं कहूंगा नहीं मुझे सुकून नहीं हो रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, 22 पे रखो, अरे 20 पे रखो, 18 पे इसे ले आओ, 15 पे ले आओ, 12 पे ले आओ, 10, मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा है। तो मैं उस एयर कंडीशन की वजह से कैसे कह सकता हूं कि मैं कामयाब हूं, इसलिए कि उसका जो नफा है वो तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। और झोपड़े में रहने वाला एक देहाती, उसके घर में पंखा नहीं, उसके घर में बिजली नहीं, उसके घर में एयर कंडीशन नहीं, वो 35 और 40 डिग्री की गर्मी में आराम से सो जाता है। तो एयर कंडीशन का जो मकसद है वही जब फौत है तो मैं अपने आप को कैसे ये कह सकता हूं कि मैं कामयाब हूं। और वो बगैर एयर कंडीशन के, बगैर पंखे के वो मकसद हासिल कर लेता है जो उसे चाहिए, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो नाकाम है। राहत और राहत के असबाब, सुकून और सुकून के असबाब, इन दोनों में फर्क करना चाहिए। मकसूद असबाब नहीं है, मकसूद राहत है। मकसूद असबाब नहीं है, मकसूद सुकून है। आजकल मेरे भाइयों पूरी दुनिया असबाब के चक्कर में पड़ी हुई है, पूरी दुनिया वसाइल के चक्कर में पड़ी हुई है। मेरे पास ऐसी गाड़ी होती, मेरे पास ऐसा घर होता, मेरे पास इतनी खेती होती, मेरे पास ऐसे मोटर बाइक होती, एक घर हो गया तो मेरे पास दो घर होते, मेरे पास तीन घर होते, मेरे पास ऐसे कपड़े होते, मेरे पास ऐसा मोबाइल होता, मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता। इसके चक्कर में वसाइल, और वसाइल को मकसूद समझा है, वसाइल को मकसूद समझा है। इतनी हिमाकत आ जाए, इतनी हिमाकत, इतना पागल बना आ जाए कि वो वसाइल और मकसूद में फर्क न कर सके। यहां से इंग्लैंड जाने के लिए जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, ये मकसूद नहीं है, वसीला है। और एरोप्लेन में इकोनॉमी क्लास में भी बैठते हैं, इकोनॉमी क्लास में भोरिया गांव का रहने वाला ये गरीब आदमी, उसी आप एरोप्लेन में बिठा दो तो वो भी जो करके बटन दबाएगा और वो नौकर या नौकरानी जी खिदमत, तो वो कहेगा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, उसे एक गिलास पानी। ये जो सहूलतें उसे एरोप्लेन में मयस्सर है, वो उसे इंग्लैंड आने के बाद भी मयस्सर नहीं होगी, और वापस भोरिया लौटने के बाद भी मयस्सर नहीं होगी। लेकिन अंदर से उसका दिल ये कहता है कि यह सफर कब खत्म हो जाए कि मैं उतर जाऊं, इसलिए कि वो समझता है कि यह एरोप्लेन मकसद नहीं है, एरोप्लेन वसीला है, वसीला को कोई मकसद नहीं बनाता। और अगर हवाई जहाज के लंदन पहुंचने के बाद उससे यह कहा जाए कि मजा आया, खिदमत हुई, सीटें कैसी हैं तुम्हारी, अब तुम यहीं पड़े रहो, वो कहेगा ना भाई जल्दी मुझे उतारो। एक देहात का रहने वाला भी मकसद और वसीले के दरमियान फर्क समझता है कि मकसद इंग्लैंड पहुंचना था, एरोप्लेन में बैठना नहीं था। अगर एरोप्लेन में बैठे बगैर भी इंग्लैंड पहुंच सकते थे तो हम पहुंच जाते, एरोप्लेन में न बैठते। ये पंखा तो वसीला है मेरे भाई, पंखा वसीला है, ये एयर कंडीशन वसीला, ये कारपेट वसीला। इस वक्त मुझे और आपको इस कालीन पर, इस एयर कंडीशन वाली मस्जिद में जितना सुकून मिल रहा है, 50 साल पहले जब मैं भोरिया में था, बगैर इस कालीन के, बगैर इस एयर कंडीशन के, बगैर इन पंखों के, उतना ही सुकून हमें हासिल था, बल्कि हो सकता है कि इससे ज्यादा हमें हासिल हो। इसलिए कि ये चीजें देखी ही नहीं थी, और जब चीजें देखी नहीं थी तो एहसास से महरूम ही नहीं था, और आदि ही नहीं थे, पंखे के आदि नहीं, एयर कंडीशन के आदि नहीं। तो उस वक्त अगर हमें पंखे के नीचे बिठा दिया जाता तो हमें सर्दी महसूस होती। अब हम चुके इन चीजों के आदि हो गए हैं, तो इन चीजों के बगैर हमें राहत नहीं मिलती, इन चीजों के बगैर हमें सुकून नहीं। ये सब सुकून के असबाब है, राहत के असबाब है, असल असबाब नहीं है असल राहत, असल असबाब नहीं है असल सुकून। मैं यहां से इंग्लैंड जाने के बाद सबसे पहली मर्तबा हिंदुस्तान दोबारा आया, कई सालों के बाद भोरिया गांव की मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर। तो वापसी में हमारे बड़े भाई जो यहां रहते हैं, उन्होंने सोचा कि इंग्लैंड से आया हुआ है और एक अरसे के बाद आया हुआ है, तो हमें वापसी के दो तीन दिन पहले बम्बे चले जाना चाहिए और जरा बम्बे की सैर करानी चाहिए इसे शरीयत में रहकर। तो हम लोग वहां चले गए। तो एक दिन दोपहर को तकरीबन 10:30 बजे बम्बे की किसी सड़क पर हम लोग चल रहे थे पैदल, और दर्जनों अफराद का वो झमघट था जिसके हम बिल्कुल आदी नहीं, और मेरी तबीयत यूं भी बाजारी नहीं है, मैं बाजार शॉपिंग सेंटर शॉप में जाना मेरी तबीयत नहीं। वल यसा का बैतुक, मैं वहां रेस्टोरेंट में भी आपको या तो मस्जिद में नजर आऊंगा, मदरसे में या अपने घर में, हाँ किसी जनाजे में चले गए, किसी और तकरीब में, किसी इयादत के लिए, वरना मैं यही, मुझे तबीयत नहीं। दूसरे मुल्कों में जाता हूं तो दूसरे मुल्कों का मैंने बाजार नहीं देखा, यहां मुझे ये बिल्कुल तमन्ना नहीं है कि कुछ मुझे आध घंटा अगर मिल जाए तो मैं जरा नवसारी के बाजार में घूम लूं, मैं जरा सूरत देख लूं। मुझे यहां ये तमन्ना नहीं होती कि मैंने आज तक तो ताजमहल नहीं देखा है, कम से कम ताजमहल तो देख लूं, मुझे बिल्कुल तमन्ना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तमन्ना नहीं। तमन्ना सिर्फ इतनी है कि दिल ठीक हो जाए और अल्लाह राजी हो जाए। इस दिल से जो अना है, जो तकब्बुर है, जो बड़ाई है, वो निकल जावे और अल्लाह की मोहब्बत उतर जावे। मेरे दिल का कोई तकाजा नहीं है, मेरे दिल का कोई तकाजा नहीं है, मैं अपनी अना की फना चाहता हूं। ये अना फना हो जाए, अना तू को इतना मिटा के तू न रहे। मेरे भाई असल कामयाबी है कि आदमी छोटा हो जावे, आदमी छोटा हो जावे, तू को इतना मिटा के तू न रहे। ये एहसास ही न रहे कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने नहीं, अल्लाह ने करवाया, अल्लाह ने करवाया। या कम से कम इतना कि अल्लाह के फजल से मैंने किया, मैंने अल्लाह के फजल से किया, या ये कि अल्लाह ने करवाया। तू को इतना मिटा के तू न रहे, तेरी हस्ती का रंगो बू न रहे, हूं में इतना कमाल पैदा कर। ये हूं यानी अपने दिल पर मेहनत कर, जिक्र की मेहनत कर और दिल के अंदर अल्लाह को उतार दे। जब अल्लाह दिल में उतरेगा तो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की बड़ाई सामने होगी, और जब अल्लाह की बड़ाई सामने होगी तो अपने खुद को छोटा महसूस करेगा, खुद को छोटा महसूस करेगा। सरपंच गांव का, सरपंच कितना बड़ा होता है, सरपंच गांव का, पटेल गांव का कितना बड़ा होता है, लेकिन कोई बड़ा पुलिस अफसर आ जाए तो उस पुलिस अफसर, बड़े पुलिस अफसर के सामने सरपंच को अपनी हैसियत मालूम होती है, वो खुद ब खुद महसूस करने लगता है कि मैं छोटा हूं, और वो चला जाता है तो फिर बड़ा। तो इसी तरह मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, लेकिन जब अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की अजमत दिल में उतर जाती है तो अल्लाह की अजमत और अल्लाह की मारिफत के मुकाबले में ये आजिज बंदा अपने को कितना छोटा पाएगा, कितना छोटा महसूस करेगा। इसीलिए बुजुर्गान दीन जब ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, यही है मेरा एजाज, एक मिसरा है एक शेर का, यही है मेरा एजाज, मेरे लिए इज्जत की चीज यही है, यही में है मेरा एजाज कि मैं कुछ भी नहीं हूं। सबसे बड़ी चीज यह है कि इंसान के दिल में ये बात आ जाए कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा अल्लाह सब कुछ है और मेरे अल्लाह ही ने मुझे सब कुछ दिया है और उसके मुझे बहुत कुछ देने से मैं लोगों की नजरों में कुछ हो गया हूं। जिस दिन अल्लाह चाहेगा इन सब चीजों को ले लेगा और फिर मैं दोबारा कुछ नहीं रहूंगा। ये ख्याल दामनगीर रहे, ये ख्याल दामनगीर रहे। हाँ, किसी जगह पर अगर कोई कुदरती मंजर हो, आबशार हो, किसी मुल्क में जाऊं और लोग कहें कि यहां फॉल्स है, आबशार है, यहां कोई बाग है जिसमें बहुत खूबसूरत फूल हैं और दरख्त हैं, यहां एक बाग है जिसके अंदर बहुत खूबसूरत परिंदे हैं, मैं वहां जाने का शौक रखता हूं, इसलिए कि उन चीजों को देखकर अल्लाह याद आता है, उन चीजों को देखकर अलिम नफी खल की समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार ला आयात लिउलिल अलबाब तफक्करु फी खल्किल्लाह, अल्लाह की मखलूक में गौर व फिक्र करो, इसलिए कि अल्लाह की मखलूक में गौर व फिक्र के नतीजे में अल्लाह की मारिफत हासिल होती है, जिसके नतीजे में अल्लाह का जिक्र नसीब होता है। तो बंबई में भाई को शौक था हमें घुमाने का, बड़े भाई हमारे, एहतराम भी हमें करना पड़ता है, बड़ों का एहतराम करना चाहिए, ये हमारी, हमारे दीन का तकाजा है। कोई हमसे इल्म में बड़ा होता है, उम्र में छोटा लेकिन इल्म में बड़ा, तो हमें उसका एहतराम करना पड़ता है। कोई हमसे उम्र में छोटा लेकिन तकवे में बड़ा, हमें एहतराम करना पड़ता है। और कोई हमसे इल्म में छोटा, तकवे में छोटा लेकिन उम्र में बड़ा, उसका हमें एहतराम करना पड़ता है। निस्बतों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि मेरे उस्ताद के बेटे हैं, ये मेरे उस्ताद के वालिद हैं, ये मेरे उस्ताद के भाई हैं, ये मेरे मोहसिन के वालिद हैं, ये मेरे मोहसिन के बेटे हैं। मेरे वालिद साहिब रहमतुल्लाह अलैह जिनकी तरबियत का मेरी जिंदगी में बहुत दखल है, वो मुझे बिठाते थे और बिठाकर नाम लेकर कहते थे कि फुना यूसुफ भाई और फुना मोहम्मद भाई और फुना इस्माइल भाई, उन्होंने मेरे ऊपर एक मरतबा ये एहसान किया था, तो मेरे मरने के बाद अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव न करे फिर भी तुम उनके साथ बुरा बर्ताव मत करना, इसलिए कि उनके तुम्हारे बाप पर एहसान है। एहसान को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन निकल पड़े हम उनके साथ। हमारे चचाजाद भाई मोहम्मद भी थे और भीड़ में, और 10:30-11 बजे तो आपके यहां की दिसंबर और जनवरी की गर्मी भी हमारे लिए तो बहुत गर्मी है, और फिर मुंबई में तो चल रहे थे हुजूम, और हॉर्न भी बहुत बज रहे थे, हमारे यहां तो हॉर्न मुश्किल से सुनने को मिलता है, हॉर्न बहुत बज रहे थे और वो ट्रैफिक की वजह से पीछे से फ्यूम भी बहुत निकल रहा था और चारों तरफ अफरा तफरी का आलम, और मैं दिल दिल में ये सोच रहा था कि मैं कब ये शेर तफरी हमारी खत्म हो और हमें सुकून मिले। लेकिन इनका लिहाज करके ये खुश थे कि मैं भाई को घुमा रहा हूं, तो हम चलते रहे। और फिर चलते चलते हम एक ऐसी जगह पर आए कि दोनों तरफ सड़क, फुटपाथ पर दर्जनों आदमी इधर से उधर हो रहे हैं, हम भी बीच में, और बाई तरफ किसी बहुत बड़ी इमारत का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है जिसमें ठोक ठाक सब बहुत हो रहा था। इधर भी बहुत ज्यादा शोर, इधर भी बहुत ज्यादा शोर। और चलते चलते ये अचानक वो हुजूम की वजह से हम ऐसे किनारे पर चले गए, तो जहां काम चल रहा था तो उसके लिए वो आरजी दीवार जो बनती है, बस उस दीवार के साथ एक आदमी चादर ओढ़ करके आराम से सोया हुआ था। अल्लाह, मैं हैरान में पड़ गया, हैरान में पड़ गया कि इतने शोर में ऐसी जगह पर जहां हम इंग्लैंड से आने वाले लोग तो डरे होंगे कहीं कोई हमारे पांव पर कदम रखकर के न चला जाए, ऐसी जगह पर ये चादर ओढ़कर इतने सुकून के साथ कैसे सोया हुआ है। उस वक्त अल्लाह ताला शान उन्होंने ये दिल का दरवाजा खोला कि वसीला अलग चीज है और मकसूद अलग चीज है। अल्लाह अगर चाहे तो बगैर वसीले के भी ऐसा सुकून अदा कर सकता है, बगैर वसीले के। वो उसके पास पंखा नहीं था, उसके पास एयर कंडीशन नहीं था, उसके पास गद्दा नहीं था, उसके पास नीचे बिछाने के लिए चादर नहीं, उसके पास तकिया नहीं, लेकिन आराम से सोया हुआ था, आराम से। और इंग्लैंड में मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके पास लेक्सस और मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू गाड़ियां, और हमारे लेस्टर के उन इलाकों में रहने वाले जो जिनमें मुतमविल लोग रहते हैं, और फैक्ट्री के मालिक और हर किस्म के वसाइल, और मेरे पास खुद आकर के रोए, बहुत रोए, बहुत रोए तन्हाई में वक्त लेकर। और मैंने जब पूछा तो कहा कि हमारे घर आइए आप, अल्लाह के लिए हमारे घर आइए अल्लाह के वास्ते। मैंने कहा मशगूल हूं, लेकिन देखा मैंने कि हालत खराब है, हमारी ऐसी तबीयत भी नहीं है कि अहले सन्नत मुतमविल लोगों की गुलामी करें, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि परेशान हाल शख्स है तो जाना चाहिए, तो मैं गया। जब उनके घर गया तो बहुत रोए, बहुत रोए। उनके वालिद जो है उनके सर के बड़ी हाथ फेर रहे थे। मैंने कहा हुआ क्या, कुछ बोलो तो सही, हुआ क्या? उनका नींद ही नहीं आ रही है, नींद ही नहीं आती। जरा आंख लगी के खुल गई, जरा आंख लगी के खुल गई, जरा आंख लगी के खुल गई, और नींद के न आने की वजह से बेहाल हूं। तो मैंने कहा कि कोई बात हुई, कोई मसला है फैक्ट्री में, कोई बात है, कोई सबब तो होगा। कहा नहीं, सबब कोई नहीं, सबक कोई नहीं। यहां बंबई की सड़क पर सोने वाले के पास राहत का एक सबक नहीं है, लेकिन वो आराम से सोया हुआ है, और उसके पास राहत के सारे असबाब है, लेकिन वो सो नहीं सकता। तो ये जो हम कहते हैं कि अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो दीन पर चलेगा अल्लाह ताला भोजा गांव का सबसे बड़ा घर उसे दे देगा। जो दीन पर चलेगा उसके हाथ में भोजा गांव की सबसे ज्यादा जमीन आ जाएगी। जो दीन पर चलेगा वो भोजा गांव की मस्जिद का चेयरमैन हो जाएगा। ये मुराद नहीं है, ये कामयाबी मुराद नहीं। जो दीन पर चलेगा उसे भोरिया गांव में झोपड़े में रहते हुए भी सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा। जो दीन पर चलेगा भोरिया गांव के हर घर में बिरयानी खाई जा रही होगी और वो पानी के साथ रोटी खा रहा होगा, लेकिन उसे जो सुकून नसीब होगा वो भोरिया गांव में किसी को नसीब नहीं होगा। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से, शायर कहता है, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। खुदा को याद करे बंदा, हर हर कदम पर अल्लाह को याद करे, हर हर कदम पर अल्लाह अल्लाह को याद करने का क्या एक मतलब तो है कि बंदा जुबान से अल्लाह को याद करे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अलअज़ीम। ये इसे लिसानी जिक्र कहते हैं, जुबानी जिक्र कहते हैं। और दूसरा, दिल से, दिमाग से अल्लाह को याद करे कि जुबान बंद है, बहुत थका हुआ है, बहुत गर्मी है, सोया नहीं है, जुबान से कुछ बोलना चाहता है, जिक्र करना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं, तो बैठे बैठे अल्लाह की याद में लग गया। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे बहुत अल्लाह को याद कर रहा है। यह है जिक्र कल्बी, जिक्र कभी कभी जुबान से जिक्र है, जिक्र जुबान में मशगूल लेकिन दिल दिमाग कहीं और, खेती में बाड़ी में, जैसे अल्लाह अकबर सूरह फातिहा भी चल रही है और दिमाग के लिए कहीं और है। यह है जुबानी जिक्र। और दूसरा, जुबान बंद है लेकिन दिल जारी है, दिल जारी है। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हजरत मौलाना मोहम्मद यासिन साहिब रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद के अव्वल दौर के लोगों में से है, हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम के दादा हजरत मौलाना मोहम्मद यासिन साहिब, वो ये फरमाते थे कि हमने बुखारी शरीफ हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी। तो जब हम हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से बुखारी शरीफ का दर्स पढ़ते थे, सुनते थे, तो कहा कि हमें दो आवाजें सुनाई देती थी, हजरत की जुबान से तो बुखारी शरीफ की तकरीर चल रही होती थी और हजरत के दिल की धड़कन से अल्लाह अल्लाह की आवाज आती थी। काफी सुनते थे कि दिल जो है वो जिक्रुल्लाह में मशगूल है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है, आशिकों का मीना और जाम है, अल्लाह का नाम हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, शायर कहता है अल्लाह वाला शायर, अल्लाह हरदम अल्लाह अल्लाह कर, यानी अपने दिल पर इतनी मेहनत कर कि तू हर घड़ी अल्लाह अल्लाह करे, अगर जुबान से नहीं तो दिल अल्लाह अल्लाह से जारी हो, हरदम अल्लाह अल्लाह कर। और जब तू हरदम अल्लाह अल्लाह करेगा है, दिल दिमाग में अल्लाह रहेगा, तो तेरा कोई कदम अल्लाह के नाफरमानी में नहीं उठेगा, इसलिए कि दिल दिमाग ये कह रहा है कि मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है और वो मुझे देख रहा है, अगर मैं गलत कदम उठाऊंगा तो वो मुझे सजा देगा, नाराज होगा, और मैं सही कदम उठाऊंगा तो वो मुझे जजा देगा और मुझसे खुश होगा। तो कदम गलत सिम की तरफ नहीं उठ सकेगा, जब कदम गलत सिम की तरफ नहीं उठ सकेगा तो दिल जो है, दिल उससे जुलमत दूर होगी और नूर से भरेगा। तो हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। अब हरदम अल्लाह अल्लाह है तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं, और नूर सीने में, नूर सीने में नूर आ रहा है, नूर आ रहा है नूर, और जुल्मत खत्म हो रही है। जब ये बात है तो अभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकेगा, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिएगा और अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मरेगा। हरदम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर, अल्लाह का होकर मर। तो एक तो है जिक्र लिसानी और एक है जिक्र कल्बी, और कभी कभी दोनों साथ जमा हो जाते हैं कि सुभान अल्लाह कहता है तो दिल में भी अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवादुहु की तंजीह के जज्बात होते हैं, जब वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवादुहु की तारीफ के जज्बात दिल में भी होते हैं, जब वो अल्लाहु अकबर कहता है तो अल्लाह की बड़ाई के जज्बात दिल में भी होते हैं। तो ये दो किस्म का जिक्र है, दो किस्म का, एक है जुबानी और एक है कल्बी, और कभी कभी दोनों जगह हो जाते हैं। तो ये जो जिक्र है, जिक्र, जिक्र का माना क्या है, जिक्र का माना ये है कि दिल दिमाग को ऐसा जाकिर बना दो और गफलत को दूर कर दो कि कुछ भी करने से पहले ये ख्याल आए कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरा अल्लाह राजी होगा, और अगर ये काम करूंगा तो मेरा अल्लाह नाराज होगा, और फिर अल्लाह का ख्याल आएगा तो अच्छे काम को करेगा, बुरे काम से रुकेगा, तो ये दीन पर चलेगा, तो सुकून नसीब होगा, सुकून। इसीलिए शायर कहता है कि न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। ये आला दर्जे का जिक्र, आला दर्जे का जिक्र। इसीलिए मुहक्किकीन फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारता है वो जाकिर है। एक शख्स जो है वो सिनेमा हॉल में बैठा हुआ है, नजर उसकी स्क्रीन पर है और वो कह रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिक्र कर रहा है, और दूसरा कुछ नहीं बोल रहा है, और उसे दोस्त ने कहा कि भाई अंदर आ जा, तू भी हमारे साथ मशगूल हो जा। वो कहता है कि ना, अल्लाह नाराज होता है, मैं यहीं बैठूंगा, हमारा सफर है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं यहीं बैठूंगा, मैं अंदर नहीं आता। ये बाहर बैठकर दो घंटे के लिए एक मर्तबा भी अल्लाह का नाम नहीं लेता, और वो अंदर बैठकर फिल्म देखते देखते मुसलसल दो घंटे तक अल्लाह का जिक्र करते हैं, वो जाकिर नहीं, जाकिर ये है। क्यों? इसलिए कि दिल दिमाग में दो घंटे तक ये ख्याल रहता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे इस काम से मना किया है, इसलिए मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। असल जिक्र ये है, असल जिक्र ये है।
اور یہ جو زبانی ذکر ہے وہ اس ذکر تک پہنچاتا ہے. بار بار ایک چیز کی جب رٹ لگائی جاتی ہے تو وہ دل دماغ میں اترتی ہے. اس لیے مشائخ ہمیں ذکر لسانی کی تلقین کرتے ہیں, ذکر لسانی کی. اور ذکر لسانی چونکہ پہلی سیڑھی ہے اور یہ اوپر والی سیڑھی ذکر قلبی تک پہنچاتی ہے, اس لیے یہ بھی بہت قیمتی ہے, بہت قیمتی. اسی لیے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی شانہ زبان سے ذکر کرنے کی غفلت کے ساتھ بھی توفیق دے دے تو یہ بھی نعمت ہے, اسے بھی معمولی مت سمجھو, اسے بھی معمولی مت سمجھو. حضرت ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ تعالی بڑے محدث گزرے ہیں, ان سے کسی شخص نے کہا کہ حضرت ذکر تو بہت کرتا ہوں لیکن دل دماغ کہیں اور رہتا ہے, ذکر بہت کرتا ہوں دل دماغ کہیں اور رہتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ اکبر. دل دماغ غافل, زبان ذکر میں مشغول, مگر دل دماغ غافل اور اللہ کا شکر ادا کرو, یہ تو فکر کی بات ہے. کہ اللہ کا شکر ادا کرو اس لیے کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ رہتے ہیں جن کا دل بھی غافل ہے زبان بھی غافل, کم سے کم تمہارا ایک عضو تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا ہے. اس کی برکت سے اللہ تعالی شان ہو دل کو بھی ذکر میں مشغول کر دیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میری بھائی کہ ہماری آپ کی اور پوری انسانیت کی دنیا بھی آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے, دین پورے دین میں رکھی ہے. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے دین میں, پورے. یہ نہیں کہ کچھ کر لیا کچھ نہیں کر لیا. اور بعض دفعہ کم علمی کی وجہ سے ہماری زبانوں سے دین کے بارے میں, اہل دین کے بارے میں, دینی احکام کے بارے میں, اہل علم کے بارے میں, مدارس کے بارے میں, دین سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے بارے میں ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ اللہ بچائے کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت پتا چلے کہ میں دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا تھا. ایسے ایسے جملے ہم بول دیتے ہیں, پردے کے بارے میں, نقاب کے بارے میں ایسے ایسے جملے بول دیتے ہیں, دہری کے بارے میں ایسے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ آدمی کے سامنے اگر مفتی کے سامنے وہ جملے رکھے جائے تو مفتی کفر کا فتویٰ دے دے گا, کفر کا فتویٰ دے دے گا. ہمیں میرے بھائی پورے دن میں داخل ہوئے, پورے دن میں. یہ نہیں کہ نماز سہولت کی چیز ہے تو نمازیں پڑھ لی, نمازیں پڑھ لی اور بد نظری سے بچنا مشکل ہے تو بد نظری میں مشغول رہے, فلم سے بچنا مشکل ہے تو فلم کو نہیں چھوڑا. نہیں, پورا دین, پورا دین. تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد, جب تک پورا دین زندگی میں نہیں آئے گا وہاں تک دل کو سکون نہیں ہوگا. ہائی ہائی ضرور رہے گی, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں, یہ شک مصیبت میں ضرور پڑے گا. اس لیے میرے بھائی پورے دین کو زندگی میں لانے کی فکر کرو. میری یہی فکر ہے, میری یہی فکر ہے. آپ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہے ان کے لیے بھی اور بالخصوص میرے اہل وطن بھوریا میں رہنے والے حضرات کے لیے یہ میری فکر ہے کہ دین پورے دین پر آ جاؤ گے, پورے دین پر آ جاؤ. اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو اس دین سے وابستہ نہیں کیا تو قیامت کے دن بہت مشکل ہو, بہت مشکل ہو, بہت مشکل ہوگا. میرے بھائی آپ جنت میں جا رہے ہوں گے اور آپ کی بچیاں جہنم میں جا رہی ہیں. آج اپنی بچیوں کی آزادی پر جو آپ فخر کرتے ہیں کہ میری بچی ایسا بولتی ہے, میری بچی بہت بے باک, وہ کسی کا خیال نہیں کرتی, ہم فخر کرتے ہیں. یہ بچی جہنم کی طرف جا رہی ہوگی اور آپ جنت کی طرف, اور آپ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے کہ وہ اللہ سے شکایت کرے گی کہ اس باپ کی وجہ سے میں جا رہی ہوں, اسے کہاں جنت میں بھیج رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ شانہ آپ کے لیے بھی جنت کا دروازہ بند کر کے آپ کو بھی جہنم رسید کرے گا. فکر کرو میرے بھائی, اپنی فکر کرو, اولاد کی فکر کرو اور پورے دین پر آؤ, دین کو سیکھو, دین کو سمجھو. رسمی رسمی دین شکر ہے اللہ کا جو کچھ وہ کرنے کی توفیق دے رہا ہے, لیکن اسی میں بس مت کرو. اسے آپ کھیتی کرتے ہیں, آپ کھیتی تو کھیتی میں صرف محنت کرنے سے کامیابی نہیں ہوتی, کھیتی میں صحیح محنت کرنے سے کامیابی ہوتی ہے. ایک شخص کھیتی میں روزانہ جائے اور پانی ہی ڈالتا رہے, پوری کھیتی کی جو 2 مہینے کی 3 مہینے کی سیزن ہے وہ جا کر پانی ڈالتا رہے, اور رات دن جتنی وہ محنت کرتا ہے اتنی کوئی نہیں کرتا, اور پھر وہ کہے کہ میری کھیتی میں سے کچھ بھی نہیں. ارے میں بیج ہی نہیں ڈالے ہو تو کیسے نکلے گا. زمین کو ہموار کرے, زمین کو صاف کرے اور پھر اس میں بیج ڈالے, بیج ڈالنے کے بعد اس میں جو دوائی چھانٹنے کی ضرورت ہے وہ چھانٹے, اس میں پانی ڈالنے. صحیح محنت ہوگی تو کھیتی بار آور ہوگی. تو دین میں بھی صرف محنت کافی نہیں, صحیح محنت ہوگی تو دینداری زندگی میں آئے گی.
صحیح محنت ہوگی تو قیامت کے دن کھیتی کو کاٹ سکے گا، نہ وظائف یا اذکار یا نمازیں دری کی دری رہ جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ کیا ہے دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے کی وجہ سے، دوسروں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، اور دوسروں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسروں پر بہتان ڈالنے کی وجہ سے، دوسروں کو ستانے کی وجہ سے ہماری یہ ساری نیکیاں چلی جائے. اس لیے میرے بھائی میری ایک فکر ہے، میری ایک تڑپ ہے. میں بھوڑیا گاؤں میں سیلا رحمی کے طور پر آپ حضرات کو ملنے کے لیے آتا ہوں، لیکن میں صرف ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آتا. یہ میرا ایک، ہم انگلش میں کہتے ہیں پیشن ہے. پیشن پیشن کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں مجھے راحت ملتی ہے کہ میں جہاں کہیں بیٹھوں میں دین کی بات کروں، میں دین کی بات کروں. جو لوگ میرے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں، کبھی کبھی ان کے لیے مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ ایک بج گیا ہے اور ابھی یہ بات ختم نہیں کر رہا ہے، یہ بات نہیں چھوڑ رہا ہے. ہمیں رات کہا ہے، صبح کہا ہے، کوئی احساس نہیں ہوتا. جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں بات آ جائے اور اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے جڑ جائے. ہم گھوڑیا بھی آنے کی جو تمنا رکھتے ہیں اس میں رشتے داروں کی ملاقات، زیارت، اس سے ہمیں تسلی ملتی ہے، یہ اپنی جگہ پر. لیکن اس سے اہم جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جائیں گے اور اہل وطن کے سامنے دین کی بات کریں گے تو ان کو راہیں ملیں گی جنت میں جانے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں ساتھ رہیں، ہم سب جنت میں ساتھ رہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرت بھی یہ فکر اپنے دل میں پیدا کریں، آج یہ اس جذبے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں کہ آج سے مقصد بنانا ہے دین کو اور پورے دین کو، کہ میری زندگی میں پورا دین آ جائے، میری زندگی میں پورا دین آ جائے، میں ہمیشہ سچ بولنے والا بن جاؤں، میں کسی کی غلط نہ کروں، میں کسی کو ستاؤں نہیں، میں کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنوں، میں دوسروں کی مدد کرنے والا بنوں، میں ہمدردی کرنے والا بنوں، میں خیر خواہی کرنے والا بنوں، میں اپنے دل کو ہر ایک سے صاف رکھوں، میں ہر ایک کے ساتھ مسکرا کر ملنے والا بنوں، میں ہر ایک سے نظر ملا کر ملنے والا. یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی بات ہوئی کہ دو آدمی ایک دوسرے کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور نظر نہیں ملا پاتے؟ نظر نہیں ملا، اتنا نہیں کر سکتے ہم؟ ہدیے تحفے بھیجنا اور دعوتیں کھلانا یہ تو بات کی بات ہے، نظر نہیں ملا پاتے. اور ہوا کیا ہے، کیا ہوا ہے کہ آپ نظر نہیں ملا پاتے؟ آپ کی وہ کیا چیز لے گیا ہے کہ آپ نظر نہیں ملا پاتے؟ نظر نہیں ملا پاتے، ایک دوسرے کو سلام تو کر لیں نظر نہیں ملا پاتے. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طليق، ایک عام مسلمان بھائی کے لیے حکم ہوا ہے کہ یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے کہ جب تم کسی ادنا مسلمان کو ملو تو مسکرا کر ملو. تو یہ تو تمہارا چچا زاد بھائی ہے، یہ تمہارا پھوپھی زاد بھائی ہے، یہ تمہارا خالہ زاد بھائی ہے، یہ تمہارا مامو زاد بھائی ہے، یہ تمہارا رشتے دار ہے، یہ تمہارا بہنوئی ہے، یہ تمہارا سانا ہے، یہ تمہارے آپس کی رشتے داریاں ہیں. اس میں بھی تم ایک دوسرے کو نظر ملا کر نہیں دیکھ سکتے، مسکرا کر نہیں دیکھ سکتے، ایک دوسرے کی خوشی سے اپنے دل میں خوشی محسوس نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کی غمی سے اپنے دل میں غمی محسوس نہیں کر سکتے، بلکہ خوشی کے موقع پر غمی محسوس کرتے ہیں اور غمی کے موقع پر خوشی محسوس کرتے ہیں. مسلمانوں کی میرے بھائیوں یہ حالت نہیں ہوتی. ایک مسلمان، ایسا مسلمان جنت میں جانے والا نہیں ہوتا. ایسے مسلمان کو جنت میں جانے کی بہت زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے. اللہ کا فضل اگر ہو گئے لیکن بہت زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے. جو دل میں میل لے کر چلتا ہے، جو کبر تکبر کہ میں بہت بڑا، میں بہت بڑا، میں بہت عبادت کرنے والا، میں بہت خیرات کرنے والا، میں بہت سخاوت کرنے والا، میں سب پر احسان کرنے والا، میں بہت مالدار، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو جنت میں جانے کی بہت زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ناچاکیاں کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں ایک دوسرے سے میل ہے، ایسے لوگوں کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی پیر کے دن مغفرت نہیں ہوتی، جمعرات کے دن مغفرت نہیں ہوتی. مبارک گھڑیوں میں، مبارک دنوں میں، مبارک اوقات میں، مبارک جگہوں میں ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ جل جلالہ عام منوال ہوئی تو ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے. اس لیے میرے بھائیوں میں بہت درد دل سے کہہ رہا ہوں، بہت درد دل سے کہہ رہا ہوں، یہ میرے دل کی گہرائی سے آواز نکل رہی ہے. ہو سکتا ہے تو میرا میرے سب اللہ کے لیے میں سب کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں. اگر نہ چلیے ختم کر دو، ختم کر دو، ایک دوسرے سے میرے گلے ملا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا، ایک دوسرے کو میرے بھائیوں प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, दीन सीखो, दीन पर चलो, अपनी अल्लाह को सिखाओ, दीन पर चलाओ। ये दुनिया चंद्रोज है, ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है, दुनिया किसी के साथ चली गई है न किसी के साथ जाएगी। हम जब इतने यूसुफ के साथ जाते हो और जालिम जालिम शख्स जिससे पूरी दुनिया थर्राती थी और काटती थी, जब उसका आखिरी बच्चा आया तो उसने कहा मार मैं अपनी बालिया हेलो खैर मैं सुनता नहीं, मेरा माल मेरा मनसब मेरी सल्तनत मेरी बादशाह आज मुझे कुछ काम नहीं है। इंडिया बगड़ रहा था, इंडिया बगड़ रहा था, अल्लाह की पकड़ आई और पकड़ इसी आई कि पेट में बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। हसन मिश्री रहमतुल्लाह अलैह पर उसने पैगाम भेजा कि हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। हसन मिश्री रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अब क्या मैं दुआ करूं, तीर निशा तीर कमान से निकल चुका है। तो उसने कहा हजरत सेहत के लिए नहीं मौत के लिए दुआ कीजिए, मौत काबिले बर्दाश्त है, मौत के लिए दुआ कीजिए। जो दूसरों की मौत का फैसला करता था वो खुद जब मौत की शिकर बन गया मेरे भाइयों तो भी वो इंडिया नजर करके हमें लगा मार में अम्मी पाली है सुनता दिया मेरा महाराज मुझे कुछ काम नहीं आ रहा है, सो गई चांदी जवाब रात रूपी है पैसे तीनार तिरा सब धरे के धरे रह गए। मैं कुर्सी में बैठता था संतरत हुक्म जारी करता था, आज कुछ काम नहीं आया मेरे भाई साथ जाएगा तो अमल जाएगा, अमल अमल साथ जाएगा, अमल साथ जाएगा, ये जो हम कुर्बानी देंगे अल्लाह के खातिर हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों पूरे दिन की तरफ आओ, पूरे दिन इबादत की हो, जिंदगी में इबादत है, नमाजें भी हो, रोजे भी हो, ज़कात भी हो, हज भी हो, तस्बीहात भी हो, तिलावत भी हो, जिंदगी में मुआमलात दुरुस्त हो, मुआमलात किसी का एक पैसा हमारे पास नहीं रहना चाहिए, किसी का एक पैसा गलत नहीं होना चाहिए। और देखो इस सिलसिले में अर्ज कर दूं कि एक है हमारा दुनियावी तरीका, है दुनियावी तरीका, हमारा साल हर साल से खेती बाड़ी का एक दुनियावी तरीका चला आ रहा है, खरीदो फरोख्त करने का एक दुनियावी तरीका चला आ रहा है, खेती में से रास्ता किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, कहां मिलना चाहिए कहां नहीं मिलना चाहिए, किसका क्या हक है क्या हक नहीं है, ये हमारा एक दुनियावी तरीका। और एक है शरीयी तरीका, तो हमें मुफ्तियों के पास जाकर पूछना चाहिए कि शरीयत तरीका किया है, शरीयत तरीका किया है। इसलिए कि अगर मामला में शरीयत तरीके का लिहाज नहीं रखा तो एक पैसा भी हमारे लिए जहन्नम में जाने के लिए काफी हो जाएगा, एक पैसा किसी का, एक पैसा किसी का जहन्नम में जाने के लिए काफी हो जाएगा। जमीन के मामले में, घर के मामले में, मीरास की तकसीम के मामले में, आपस में रिश्तेदारों में मीरास शरीयत एतबार से तकसीम होनी चाहिए, खरीद और फरोख्त आप अपने खेती की पैदावार को किस तरह बेच रहे हैं किस तरह खरीद रहे हैं उस पर शरीय एतबार से हम पर कुछ लागू होता है नहीं लागू होता है, कितना लागू होता है पूछो उलमा इकराम से, मुफ्तिया इकराम से पूछो, बड़े बड़े दारुल इफ्ता है, आदिपुर यहां से दूर नहीं है, खमिया यहां से दूर नहीं है, दारुल इफ्ता है मुफ्तिया इकराम, जोगवा में दारुल उलूम है, डाबर में एक मौक्कर दारुल इफ्ता है, जाओ इन इदारों में जाओ और जाकर के अपने अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करो, मुआमरात दुरुस्त होने चाहिए, मुआमरात और मुआशरत है, मुआशरत हमारी ऐसी होनी चाहिए कि किसी को हमसे तकलीफ न पहुंचे, हम ऐसी जिंदगी गुजारें जिससे किसी को तकलीफ न पहुंचे। इस सिलसिले में मैं देखता हूं हिन्दुस्तान में कि बहुत कमी और कोताही है, बहुत कमी और कोताही, मुआशरत मुआशरती उसूल यूरोप में बहुत है, यूरोप में मुआशरती उसूल उनके गैर मुस्लिमों के ऐसे हैं कि वो इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं कि हमसे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, बस के लिए लाइन में खड़े रहेंगे, टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहेंगे, कोई उजरत नहीं करेगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, किसी को हमसे तकलीफ पहुंचे ऐसा नहीं करते। कोई बैतुल खला में जाएगा तो साफ किए बगैर नहीं निकलेगा, कोई सिंक पर बेसिन के ऊपर वजू हाथ धोएगा मुंह धोएगा, अंग्रेज गैर मुस्लिम साफ किए बगैर बाहर नहीं निकलेगा, किसी को हमसे तकलीफ न पहुंचे। तो यहां से देहातों से जो मुसलमान वहां चले गए तो कितने अफसोस की बात है कि गैर मुस्लिमों की बरकत से उनमें भी मुआशरत आ गई, गैर मुस्लिमों की बरकत से मुआशरत आई, और यहां पर मुआशरत का बिल्कुल एहतमाम नहीं, मुआशरत का बिल्कुल एहतमाम नहीं, हम ये ख्याल नहीं करते कि हम किसी के घर खाने के वक्त में जा रहे हैं और हम मधु नहीं है, हम मधु नहीं है, हमें खाने के वक्त में नहीं जाना चाहिए, हम किसी के घर जा रहे हैं किस वक्त जा रहे हैं, सोए हैं जाग रहे हैं, हम किसी से मुसाफा करते हैं, अभी तो सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद जिक्र अजकार में वो मशगूल है, हम सलाम करने के लिए आ गए, अजान हो रही है और हम सलाम कर रहे हैं। आदाबुल मुआशरत, मुआशरत का मतलब है कि हम ऐसा कोई काम न करें जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ पहुंचे। और चौथी चीज हुस्न अखलाक, हम सब्र करें, अगर कोई तकलीफ हो जाए तो हम सब्र करें, अगर कोई अच्छी चीज मिले तो हम शुक्र अदा करें, अगर हम अल्लाह ने पैसा दिया है तो हम सखावत करें, सखावत करें, हम लोगों पर खर्च करें, दुख नसीब हम बचें। ये जो हुस्न अखलाक है बातिन की, हम अगर कोई मुसीबत आ जाए अल्लाह पे तवक्कुल करें, बीमारी आ गई अल्लाह पे तवक्कुल करें, सब्र करें तवक्कुल करें, सब्र करें तव... ये बातिन की जो अखलाक है, जो मशाइख के पास जाकर खानकाहों में दिनों की जब आबियारी होती है तो हासिल होते हैं। ये दीन के बड़े बड़े पांच शोबे हैं, उनमें से चार ये हैं कि इबादात, मुआमलात, मुआशरत, हुस्न अखलाक, और पांचवा शोबा है अकाइद, अकाइद की दुरुस्तगी। हम बचपन में बहुत ही ज़ेर तालीम इस्लाम पढ़ लेते हैं और उसके बाद जिस मुआशरे और माहौल में हम रहते हैं उस माहौल के और खानदान के असर की वजह से हमारे अकाइद बिगड़ते चले जाते हैं धीरे धीरे, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अकाइद बिगड़ चुके हैं। तो मैं तो ये कहता हूं कि जरा बड़ा हो जाने के बाद भी अपने अकाइद को एक मरतबा दोबारा पढ़ लेना चाहिए, तालीम उल इस्लाम का फिर अकाइद के बाद में दौर कर लेना चाहिए किसी आलिम से, ताकि मरने से पहले पहले हमारी अकीदे दुरुस्त हो जाए। मेरे शेख हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह तआला बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम, जय्यिद आलिम। उनकी एक किताब जो है दारुल देवबंद में पढ़ाई जाती है, इख्तिलाफ उम्मत और सिराते मुस्तकीम, जय्यिद आलिम। और फिरके बातिला में पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा से मैंने सुना कि हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया के उलमा की तरफ से, अहले हक की तरफ से फर्ज किफाया अदा किया है। अकाइद में इतनी गिरफ्त, अकाइद में इतनी ज्यादा गिरफ्त हजरत की, हजरत की तहरीरात को पढ़ते हैं अकाइद के सिलसिले में, लेकिन फिर भी हजरत को कितना खौफ था अपनी आखिरत का। फरमाते थे कि ए अल्लाह, हजरत फरमाते थे कि ए अल्लाह, मैंने पूरी जिंदगी अकाइद की हिफाजत की कोशिश की, मैंने पूरी जिंदगी अकाइद की हिफाजत की कोशिश की, और मैंने अकाइद को यह समझकर लोगों के सामने बयान किया कि आपकी मंशा यही है इस अकीदे के बारे में, लेकिन हो सकता है कि मेरे समझने में गलती हो गई हो, तो ये अल्लाह मैंने जो अकाइद बयान किए हैं वो अगर सही है और हकीकत में सही है, पूरी उम्मत उन अकाइद को बयान करती चली जाती, लेकिन खौफ कितना, खौफ कितना, तो ये अल्लाह मुझसे अगर सही हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर मुझसे किसी जगह गलती हुई है तो मैं आपको गवाह बनाता हूं कि मेरा वो अकीदा नहीं है, मेरा वो अकीदा है जो आपने भेजा है। आखिर अभी मेरा जब आप हिसाब ले तो मेरी तहरीर के मुताबिक मत लेना, आपने जो अकीदा भेजा है उसके मुताबिक हिसाब लेना। कितना खौफ होता था अपने अकाइद के बारे में, और हम लोग अकाइद की तरफ मुड़कर देखते ही नहीं। जो बुनियाद है हमारी मस्जिदों के अंदर, वाज़ो नसीहत की महफिलें होती है, उसमें मुआशरत बयान होती है, उसमें इबादत बयान होती है, अकाइद बयान नहीं होते। तो अकाइद को सीखिए, तो अकाइद बुनियाद है और उसके ऊपर फिर चार दीवारें, एक तरफ इबादत, एक तरफ मुआमलात, एक तरफ मुआशरत और एक तरफ हुस्न अखलाक। अब ये पूरा दीन बन गया, और जब ये पूरा दीन बन गया तो इस दीन पर अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मा लवालहू ने दुनिया की आखिरत की कामयाबी जो है उसका ऐलान फरमाया है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये बात हम बार बार सुनते रहते हैं कि हमारी आपकी इन तमाम इंसानियत की, दुनिया की आखिरत की कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है, लेकिन ये गौर नहीं करते कि किस दीन में, किस दीन में। इब्राहिम मैं का अपना एक दीन है कि ये दीन है जिस पर मुझे चलना है और मैं जन्नत में चला जाऊंगा, और इस्माइल भाई का अपना एक दीन है, हर एक ने अपना कुछ चुन लिया है, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा और ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा और ये करूंगा। यानी हर एक ने अपना दीन बना रखा है, तो उस दीन में कामयाबी नहीं है जो आपने बना रखा है, कामयाबी उस दीन में है जो इबादात पर मुश्तमिल है, मुआमलात पर मुश्तमिल है, मुआशरत पर मुश्तमिल है, उसने अखलाक पर मुश्तमिल है और सही अकाइद पर मुश्तमिल है। ये हमें सीखने चाहिए उलमाए किराम की बस बैठकर, और जब जब भी हम कोई बात सुने जो हमारी तबीयत के खिलाफ हो, हमारे मिजाज के खिलाफ हो, तो नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने जहन में ये बात बिठा लेनी चाहिए। मैं तो इंग्लैंड में ये कहता हूं कि बयान में जब बैठो तो एक नोटबुक लेकर बैठो और एक पेन लेकर के बैठो, और जब भी ऐसी कोई बात बयान की जाए जो सही नहीं है और वो आपकी जिंदगी में है तो उसे नोट कर लो। जैसे कर्ज की होती है ना लिस्ट कि इब्राहिम भाई से 5,000 लेने हैं, इस्माइल भाई से 10,000 लेने हैं, और बार बार देखते रहते हैं कि किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, और उसमें काट छट होता रहता है। इब्राहिम भाई से 5,000 ले लिए तो काट देते हैं, इब्राहिम भाई फिर 10,000 कर्ज ले गए तो फिर लिख लेते हैं। तो लिखो कि मेरी जिंदगी में क्या क्या बुराइयां हैं, और महीने में एक दफा अकेले तन्हाई में बैठकर उस लिस्ट को देखो कि इस पूरे महीने में कौन सी बीमारी चली गई है, और कौन सी बाकी रही है, और कौन सी नई पैदा हुई है, और फिर उसको निकालने की कोशिश भी करो और अल्लाह ताला शानहू से दुआ भी करो। और उलमाए किराम की महफिलों में बैठो, हजरात उलमाए किराम की महफिलों में बैठो। हमारे यहां अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम साहिब जो है वो जुमा से पहले भी बयान करते हैं और उसके अलावा भी वक्तन फवक्तन दीन की बातें करते हैं, तो आप हजरात को आना चाहिए। जैसे आज आए हैं इसी तरह इमाम साहिब की बात भी सुननी चाहिए। ये मत देखो कि कौन बोल रहा है, ये देखो कि क्या बोल रहा है। मैं भी कुरान और हदीस की बात कह रहा हूं, हमारे इमाम साहिब भी कुरान और हदीस की बातें कह रहे हैं। किसी के बोलने का तर्ज और होता है, किसी के बोलने का तर्ज और होता है। बाहर से कोई नया आदमी आता है तो हमारी तबीयत उसकी तरह माइल होती है, मकामी आदमी होता है माइल नहीं होती। हम अपनी जरूरत समझ करके आए और आकर के इनकी बातों को सुने, जो तालीम होती है रोजाना उसमें बैठे। और अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते जो है आज सुबह फजर की नमाज के बाद यहां जितने लोग थे उनके साथ मशवरा हुआ और मैंने मौलाना सारे साहिब से कहा कि महीने में एक दफा हर महीने के पहले जुमेरात को मौलाना सारे साहिब को यहां बैठकर के वाज बिल किताब करना चाहिए। तो आप पूरे गांव वालों से मैं दरखास्त करता हूं कि अल्लाह ताला शानहू ने हमारे भुरिया गांव में अच्छे अच्छे उलमा पैदा किए हैं जो माशाल्लाह मदारिस के अंदर दरसुल तदरीस की खिदमत अंजाम देते हैं, अच्छे कुर्रा हैं, अच्छे उलमा हैं, तो इनसे इस्तीफादा करो। हजरत मौलाना सबसे कदीम है और बड़े भी हैं, तो मैंने और फिर एक ताल्लुक भी रखते हैं और मुझसे बड़े हैं लेकिन मेरी बात मान भी लेते हैं, अल्लाह इनकी जज़ाए खैर दे। तो मैंने कहा कि मौलाना के महीने में एक दफा जो है वाज बिल किताब किताब पढ़कर के सुनो, इसलिए कि ऐसे ही तकरीर में सब बातें नहीं आती। एक किताब ले ली आपने, पढ़ते चले गए समझाते चले गए, पढ़ते चले गए समझाते चले गए, उसमें भी आप शिरकत करो, तबलीग में भी वक्त लगाओ। और यहां करीब में जो मशाइख की खानकाहें हों तो उनसे वाबस्ता होकर अपने आपको उनसे भी वाबस्ता करो। मौलाना सालिक साहिब को मैंने भी इजाजत दी है और मेरी तरफ से ये मुजाज बैद हैं, तो इस वजह से मैंने इनसे कहा कि हफ्ते में महीने में एक दफा आपको बैठना चाहिए ताकि लोगों को मौका मिले, गांव वालों को मौका मिले आपकी सोहबत में बैठकर आपसे इस्तीफादा करने का। पीरी मुरीदी ये मकसूद नहीं है और पीरी मुरीदी की कोई दिलचस्पी भी नहीं, लेकिन अपने आप को अच्छा मुसलमान बनाने की फिक्र तो हमने से हर शख्स को मेरे भाइयों करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला शानहू मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। इन चंद गुजारिशात पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। उम्मीद है कि जितने दर्द दिल से और दिल की गहराई से मैंने बात कही है, आप हजरात भी अपने दिल की उतनी ही गहराई में इन बातों को जगा देंगे और ये पैगाम जो है दूर दूर तक औरतों में भी पहुंचाएंगे और दीन को जिंदगियों में आम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मनवालहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मतालिब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, दिल तो बहुत चाहता है तो बहुत कुछ कहूं। कल मैंने मौलाना को एक शेर सुनाया था कि उस आते दिल तो बहुत है मगर उस आते सहरा कम है, उस आते दिल तो बहुत है मगर उस आते सहरा कम है, इसलिए मुझे तड़पने की तमन्ना कम है। तो मतालिब है बहुत, वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फ़ज़ल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, अपनी मर्जियात पर चलाए, ना मर्जियात से बचाए, वैसा बना दे जैसा वो देखना चाहता है। अल्लाह ताला हर घर को, सिर्फ भरिया वालों की नहीं, जो लोग आए हैं उनके घरों को भी और पूरे आलम में मुसलमान जहां जहां रहते हैं उनके घरों को भी अल्लाह ताला शानहू दीन से मुनव्वर करे, अमल सालिहा से मुनव्वर करे और बदअमली और बुरे कामों की नहूसत से पाक करे। और अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मनवालहू हमें, हमारी नस्लों को, क़यामत तक आने वाली नस्लों को अपना बना के रखे और अपने काम में लगाए रखे।
اور اللہ تعالیٰ شانو ہمیں حسن خاتمہ کی مقام صدیقیت کے ساتھ موت نصیب فرمائے, قبروں کو بھی آسان کرے, اور اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے ہم سب کو جمع کرے. جب میں پہلے مروں گا آپ بعد میں مریں گے, آپ پہلے مریں گے میں بعد میں مروں گا, تو ملاقات کہاں ہوگی؟ میزا میں مسجد میں. تو جس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی تو جس جس سے محبت ہوئی اسے ڈھونڈے گا, اور جب وہ مل جائے گا تو دونوں کتنے خوش ہوں گے, کیسے بغیر گیر ہوں گے کہ ہم تو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ گئے. اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی حساب ہونے والا نہیں ہے, اب حساب نہیں ہوگا, اس لیے کہ تبھی تو اللہ کے عرش کے نیچے جگہ ملی. اور اللہ تعالیٰ شانوں کے جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہمیں جگہ نصیب فرمائے, اور ہمارے جو مرحومین ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے, ہمارے اساتذہ, ہمارے ماں باپ, اور ہمارے مشائخ, اور ہمارے جتنے بھی سلسلے ہیں اوپر تک, جن لوگوں کی بدولت دین یہاں تک پہنچا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو رفع درجات نصیب فرمائے. اور ہمیں جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے مشائخ کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے سرخ روئی کا ذریعہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو صرف اس کی رضا کے لیے قائم و دائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ بار بار بھوریا گاؤں میں بھی ملاقات کرائے, اور دوسرے جہاں جو دیہات ہیں بستیوں میں وہاں بھی ملاقات کرائے, اور اللہ تعالیٰ شان و حرمین شریفین میں بھی ہماری بار بار ملاقات کرائے, وہاں کی موت ہمیں نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیشہ کے لیے اکٹھا فرمائے, اور اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.